الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمه صديقة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا علما. تو اس کلاس میں ہم اس عالی ماں کا موضوع پڑھ رہے ہیں، اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت میں خاتون کی کتاب اس عالی عورت میں سے، اور اس میں ہم پیج نمبر 133 کے اوپر ہیں، 133. اس میں جو عنوان چل رہا تھا وہ تھا کہ بلوغت کی عمر کے بچوں کی تربیت. تو بلوغت کی عمر کی بچوں کی تربیت میں جو پوائنٹ ابھی پڑھنا ہے، یا پیچھے سے ریکیپ تھوڑا سا، ایک ہی پوائنٹ پڑھا تھا پوری کلاس میں ہم نے پچھلی دفعہ، کہ بچوں کے اسکول کے جو ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو ان میں انوالو رہیں. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کو پورا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس سے جو ہے نا وہ کوئی بے وقوفی کی بات نہیں کرے گی کہ دیکھو حضرت اسکول کی بات کر رہے ہیں اور یہ جو ہے نا وہ ہوم اسکولنگ کی بات کرتے ہیں، تو یہ تو اپنے مشائخ سے جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ تو ان کے راستے سے ہٹ کر کے اپنی کوئی ڈیڑھ اینٹ کی جدی مسجد بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی بے وقوفی کی باتیں کوئی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، پوری سمجھائی تھی ہم نے یہ سارا سارا مسئلہ. ٹھیک ہے، ہمارے مشائخ نے لوگوں کو آہستہ آہستہ دین کی طرف جو ہے وہ لانے کی جو محنت کری ہے نا، اب جو ہم ہوم اسکولنگ کی باتیں کر رہے ہیں اور اس نظام کے اوور آل جو ہے وہ اس نظام کو چھوڑنے کی جو باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہم اسی محنت کے اوپر بلڈ کر رہے ہیں جو ہمارے مشائخ نے کی، جو ہمارے مشائخ نے آج سے 5, 10, 15, 20, 35 سال پہلے جو ساری محنتیں کری ہیں نا. ٹھیک ہے، جن کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ دین کی طرف اتنا آ گئے ہیں کہ وہ سننے کے لیے تیار ہو گئے اور وہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اب ہم اس کے اوپر مزید بلڈ کر رہے ہیں کہ بھائی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہوا طریقہ تھا، اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں لے کر آئیں. اور یہ جو تعلیمی نظام ہے اور یہ جو میڈیا کا نظام ہے، اس سے اپنے آپ کو الگ کریں، اپنی اولادوں کو الگ کریں. اگر ہمارے مشائخ وہ محنتیں نہ کرتے جو انہوں نے کریں، تو ہم آج یہ کام کرنے کے قابل نہ ہوتے، ہم یہ آج باتیں کرنے کے قابل نہ ہوتے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ جس کو سمجھ میں آیا آ گیا، جس کو نہیں آیا وہ رہنے دیں، اگلا پوائنٹ سنیں آپ. تو آگے فرماتے ہیں کہ اس چیز کا بڑا خیال رکھیں کہ یہ جو ٹین ایجر بچے ہوتے ہیں، آبزرو ویئر دے اسپینڈ دیئر منی، کہ وہ اپنے پیسے کو خرچ کہاں کرتے ہیں. بچے پیسے جہاں خرچ کرتے ہیں، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی ذہنی سوچ کیسی ہے. ٹھیک ہے، تو چھوٹے بچوں کو تو پیسے حوالے ہی نہیں کرنے چاہیے، اور پیسے حوالے کرنے کے یعنی ایک تو یہ چھوٹے بچوں کو پیسوں کی سمجھ نہیں ہوتی، وہ اس کو ضائع کر دیں گے، وہ اپنے کسی کھیل ویل کے اندر اس کو لگا دیں گے تو نوٹس خراب ہو جائیں گے یا گم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر پیسے ان کے پاس ہیں بھی، تو ان کو جو ہے وہ آپ مارکیٹ نہ بھیجیں. ٹھیک ہے نا، جیسے آپ نے 8 سال کے بچے کو پیسے دے دیے، 10 سال 11 سال کے بچوں کو پیسے دے دیے، لیکن وہ اس پیسے کا کیا کرے گا؟ دکان جو ہے وہ گھر میں تو نہیں ہے نا، تو وہ گھر میں بیٹھ کے تو شاپنگ نہیں کرے گا، انلیس کہ آپ نے اور بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اس کو آن لائن شاپنگ کی اجازت دے دی، پھر وہ گھر میں بیٹھ کر بھی شاپنگ کر سکتا ہے آن لائن. بھائی ایسے نہ کیا کریں نا، اس قسم کی حرکت ہے. بچے کو جو ہے وہ بازار بھیج دیا، چھوٹا بچہ ہے وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، بچی ہے وہ تو اور بھی کیا کرتے ہیں یہ سٹورز والے، یہ دھمکانا شروع کر دیتے ہیں. یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، جب آپ اپنی بچی کو کسی دکان بھیج دیتی ہیں نا محلے کی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بس محلے کی دکان ہے اور جو ہے وہ محلے کے انکل ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں، اور اگر کچھ کیا بھی تو ہمیں پتہ چل جائے گا، بچہ آ کے بتا دے گا. نہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی اتنے بیوقوف نہیں ہوتے، وہ پہلے بچے کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کو بتایا نا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، اگر تم نے کسی کو بتایا نا تو میں تمہیں بند کر دوں گا. بچہ ڈر جاتا ہے، بچہ سہم جاتا ہے، وہ اس کی بات پہ یقین کر لیتا ہے.
और वो इतना डर जाता है और इतनी डर जाती है, लड़कियां ज्यादा डर जाती हैं, लड़के भी डर जाते हैं जब कोई बड़ी उम्र का आदमी जो है वो ऐसे डराता और धमकाता है ना, डर जाते हैं। अब वो एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालते अपने माँ बाप के सामने, क्योंकि वो अंकल मार देंगे, वो अंकल जो है वो घर में घुस आएंगे, वो फलाने को मार देंगे, मुझे नहीं मारेंगे तो मेरे अब्बा को मार देंगे। वो हकीकत समझ करके वो वाकई खामोश हो जाते हैं और फिर उनके साथ जो है ना वो सब कुछ कर गुजरते हैं, दुकान वाले, स्टोर वाले, मोहल्ले वाले, सब कुछ कर गुजरते हैं, फिर उनके बाद कुछ भी नहीं छोड़ते उसके बाद वो, ठीक है ना। तो बच्चों को मत भेजा करें जब वो छोटे हो तो, ठीक है। यहाँ पर तो उन बच्चों की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर तो उनसे भी बड़ी उम्र के, बालिग हो जाने का मतलब यहाँ पर यह है कि 15-16 साल लड़कों की बात हो रही है, वैसे भी लड़कियों की तो फिर भी बात नहीं हो रही यहाँ पर कि लड़कियों को आप जो है वो शॉपिंग करने के लिए बाहर भेज दें, ठीक है। तो लड़कों की बात हो रही है, तो अब इन लड़कों को जो आपने पैसे दिए हैं, उनके हवाले किए हैं, तो अब ये देखें कि वो कैसी जगह पे स्पेंड करते हैं अपने पैसों को, ठीक है। तो उससे उनकी जहनी सोच का अंदाजा हो जाएगा कि भाई उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं, क्योंकि इंसान के पास पैसे जो होते हैं, अनलेस के आप मिलियनर बिलियनर हैं, तो पैसे जो है वो आपके पास शायद अनलिमिटेड हो, लेकिन वैसे तो पैसे अनलिमिटेड नहीं होते ना। तो जब लिमिटेड पैसे होते हैं तो फिर खर्च करने वाला देखता है कि मैं इनको वहां खर्च करूं जहां पे मुझे यानी सोच समझ के खर्च करते हैं ना, ऐसी चीज में खर्च करते हैं जो उसके लिए अहम होती है। तो जब वो किसी चीज पे खर्च करेगा तो ये उसके जहन के अंदर अहम होगी जब भी उसने उसके ऊपर खर्च किया, ठीक है। तो इससे जो है ना वो बच्चों की सोच और बच्चों की प्रायोरिटीज इनका वालदैन को पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगला उन्वान शुरू करते हैं, नौजवान बच्चों के वार्निंग साइंस, खतरे की निशानियां, ठीक है। खतरे की निशानियों का मतलब ये होता है कि खतरा खुद नजर नहीं आ रहा आपको, लेकिन उसके कुछ अलामात नजर आ रही हैं, उन अलामात से आप पता करते हैं कि खतरा मौजूद है, अगरचे कि मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। जैसे आग, ठीक है, तो आग जो है ये खतरा है ना, आग खतरे की अलामत नहीं है, आग खतरा है। इसकी अलामत क्या है? धुआं, ठीक है। तो अगर धुआं नजर आ रहा है तो फिर आप दौड़ते हैं कि भाई आग लगी हुई होगी, हालांकि आग तो आपको नजर नहीं आ रही थी। अब अगर कोई शख्स ये जानता ही ना हो कि भाई धुआं जो है वो आग की अलामत है, तो वो धुआं देख करके यही कहेगा कि यार ये क्या, ये काला काला रंग जो है ना वो आसमान में क्यों, ऐसे ही बस काला काला रंग, पता नहीं क्या हो रहा है जो काला काला रंग जो है ना वो आसमान में नजर आ रहा है। उसको पता ही नहीं कि भाई धुआं जो है वो खतरे की अलामत है, आग की अलामत है, ठीक है ना। तो आग जो है ना वो सब कुछ जला के खत्म कर देगी, और ये साहब जो है ना, ये साहिबा जो है ना, वो धुएं को देख करके जो है वो सोचते रहेंगे कि भाई ये क्या चीज होती है, ठीक है ना। तो पता होना जरूरी है कि आग की अलामत धुआं होती है, होता है। उसी तरह खतरे की अलामत अपने बच्चे के बारे में ये भी पता होगा, तब जो है वो आप कुछ एक्शन लेंगे, वरना आप देखते रहेंगे कि अच्छा ये मेरा बच्चा ये वाला काम कर रहा है, ओ मेरा, आखिर को जो है वो इस उम्र में सारी बच्चे ये काम करते होंगे, और मस्ट बी समथिंग नॉर्मल, राइट, और इस उम्र का तकाजा होगा, ऐसी उल्टी सीधी बातें सोचते रहेंगे, ठीक है ना। इस वजह से गौर से इन बातों को सुनना चाहिए। तो फरमाते हैं कि कुछ टीन एजर्स के वार्निंग साइंस होते हैं, खतरे की निशानियां होती हैं, हर माँ को उसका पता होना चाहिए और उस पर नजर रखनी चाहिए, उन पर नजर रखनी चाहिए। मसलन नंबर 1, पुअर फिजिकल फिजिकल हेल्थ, पुअर फिजिकल हेल्थ, खराब जिस्मानी सेहत। अगर एक नौजवान बच्चे की सेहत बहुत खराब है तो ये खतरे की अलामत है। जैसे छोटे बच्चे की जब सेहत खराब होती है तो आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ना, राइट, उसके जो है वो डॉक्टर साहब टेस्ट करवाते हैं, पूरा उसका जो है वो वर्कअप होता है, राइट, भाई क्या पता खुदा ना खासा मेरे बच्चे के अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं है, मेरे बच्चे के अंदर जो है ना वो कोई और ऐसी अलामत, ऐसी जो है वो कोई बीमारी तो नहीं है कि जिसकी वजह से बार बार जो है वो उसके ऊपर बीमारी के सिम्टम्स आ रहे हैं। आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ना, आप फिक्रमंद होते हैं ना, आप छोड़ते तो नहीं है। तो भाई इसी तरीके से बड़ा बच्चा, बालिग बच्चा है, तो उसकी अगर सेहत खराब हो रही है तो इसकी भी तो कुछ अलामत हो सकती है ना। या तो ये बचपन से पैदाइशी तौर पर बीमार था तो भाई आप कहेंगे हमें अभी अभी भी वही सिलसिला चल रहा है, तो बस वो उसके हैं ये वाले इश्यूज हैं इसके साथ। लेकिन नॉर्मल था, अब एकदम से जो है वो बीमार हो गया और कमजोर हो गया, तो कोई और वजह तो नहीं है इसकी? ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट वार्निंग साइन। ठीक है, ड्रॉप इन स्कूल परफॉर्मेंस। अच्छा, तो पुअर फिजिकल हेल्थ का जो है वो जो वार्निंग साइन है, तो फिर ये क्या किस तरफ जो है वो वार्न करता है, क्या खतरा हो सकता है? ये कुछ या तो ड्रग्स कर रहा है, ठीक है ना, ड्रग्स करने की वजह से, यानी जो मनुष्यात कहते हैं जिनको, ठीक है ना, उनकी वजह से इसकी सेहत खराब हो सकती है, ठीक है ना, या ये कि ये कुछ ऐसा शहवानी किसी किस्म के सिलसिले के अंदर फंस चुका है, उसकी कोई ऐसी आदतें बन गई हैं कि जिसकी वजह से इसकी सेहत जो है ना वो गिरनी शुरू हो गई, या कोई और इसकी रीजंस हैं, ठीक है ना। अब ये डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला ने दुनिया में डॉक्टरी का पेशा बनाया किस लिए? इसीलिए तो बनाया कि आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो फिर वो आगे से क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, मजीद डायग्नोसिस करेंगे, वो आपको मजीद चीजें पूछेंगे, बच्चे से पूछेंगे, उसके बॉडी साइंस को देखेंगे, उसके वाइटल साइंस को देखेंगे, उसके जो है वो बॉडी जो 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 लैंग्वेज होती है उसको स्टडी करेंगे, ताकि वो इस मसले के तह तक पहुंच सकें। ये नॉन डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये। ठीक है, तो क्या हमारे जिंदगी में कोई ऐसे डॉक्टर साहब हैं जो कि चने, जिस्मानी डॉक्टर्स तो हर जगह मौजूद हैं, डाइम ए डजन, राइट, लेकिन क्या रूहानी डॉक्टर हैं, यानी जो कि इखलाकी बीमारियों को हमारी औलाद के अंदर डायग्नोज कर सके, राइट? तो अगर नहीं है तो फिर भाई अल्लाह का हुक्म पीछे हमें पड़ा है ना, कूनू मअ सादिकीन, तो उस हुक्म पे आपने अभी तक अमल क्यों नहीं किया, राइट? अगर अमल करते तो आपकी जिंदगी में होते हैं ऐसे रूहानी डॉक्टर्स, ठीक है, इनके पास अपने बच्चे को ले जा सकते। अच्छा, पॉइंट नंबर टू, यानी वार्निंग साइन नंबर टू, ड्रॉप इन स्कूल परफॉर्मेंस, स्कूल की खराब कारकर्दगी। अगर स्कूल के ग्रेड्स में कारकर्दगी कम हो गई है तो ये भी खतरे की अलामत है, ठीक है ना। अब ये वही बात जो पहले हम कर चुके हैं कि भाई अगर स्कूल सिस्टम के अंदर हैं और स्कूल सिस्टम के अंदर अच्छे ग्रेड्स ही आपका जो है वो क्राइटेरिया था और आपके लिए, आपके बच्चे के लिए अहम था, और बच्चा जो है वो अच्छे ग्रेड जो है वो लेकर के आ जाता था, यानी किताबों के साथ ज्यादा वक्त गुजारता था, किताबें पढ़ता था, और ठीक है, तो अब उसने किताबें पढ़नी क्यों छोड़ दी? अब उसने जो है ना वो, अगर उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये थ्योरेटिकल स्किल्स दी थी और वो उसकी वजह से अच्छे ग्रेड्स लेकर के आता था, तो अब एकदम से ड्रॉप इन स्कूल परफॉर्मेंस, देर मस्ट बी अ रीजन फॉर इट, देर मस्ट बी अ कॉज फॉर इट, ठीक है ना। तो वो कॉज जो है वो क्या है, क्या क्या वजह बन गई उसके, ना, तो उसको फिर आपको इग्नोर नहीं करना हो कर सकते, बल्कि उसको फिर आपको, ठीक है, देखना पड़ेगा उसकी कॉजेस को, ठीक है। इसके अलावा बाकी ये है कि भाई हर बच्चा ऐसा नहीं होता, हर बच्चे के अहवाल ऐसे नहीं होते, हर बच्चे को अल्लाह ताला ने एक जैसी सलाहियतें नहीं दी होती हैं कि वो अच्छे ग्रेड्स लेकर के आए, ठीक है, तो ये फिर एक अलग मौजू है, और ये भी बड़ा एक अहम, बड़ा अहम मौजू है, ये भी एक बड़ा अहम मौजू है, ठीक है, कि ग्रेड्स को जो है ना वो अपने बच्चों की जन्नत जहन्नुम का मसला ना बने, ग्रेड्स को अपने बच्चों की जो है ना वो दुनिया और आखिरत का, और जो है वो उनके अच्छी और बुरी जिंदगी का क्राइटेरिया खाली ग्रेड्स को बना देना, ये एक इंतहाई यानी फरसूदा और इंतहाई जो है ना वो जहालत पर मबनी सोच है, जिसकी वो शैतान ने जो है ना वो हमें कन्विंस कर दिया है कि अच्छे ग्रेड्स मींस कामयाबी, ठीक है ना, और दीनदार लोगों के लिए ये इस जहालत के ऊपर हमें कन्विंस कर दिया है कि अच्छे ग्रेड मींस आखिरत की कामयाबी। दुनियादारों को तो इस पे कन्विंस किया था ना कि अच्छे ग्रेड ग्रेड मींस दुनिया की कामयाबी, अब जो हमारे जैसे दुनियादार बने हुए हैं ना, अब हमारे जैसे दीनदार यानी नफली दीनदार जिनको कहते हैं, ठीक है ना, जिनको अकायद और फराइज की फिक्र नहीं होती लेकिन नफलों की बड़ी फिक्र होती है, ठीक है ना, तो ये आजकल की दीनदारी नफली दीनदारी है सारी की सारी तकरीबन, ठीक है, तो उनको क्या कन्विंस किया है, अच्छे ग्रेड्स मीन्स आखिरत की कामयाबी, ठीक है ना, क्योंकि वो ऐसे लोगों को दीनी कार्ड, उनके साथ शैतान दीनी कार्ड इस्तेमाल करता है, ठीक है। बहरहाल, तो वो एक अलग मौजू था। अब हम इसमें मजीद जाने के बजाय तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, विड्रॉल
फ्रॉम एक्टिविटीज, ठीक है, कि घर के कामों से अलग थलग रहें। ऐसा बच्चा अगर घर की सरगर्मियों से अलग थलग रहने की कोशिश करता है तो ये भी खतरे की अलामत है, ठीक है। अब घर की जिम्मेदारियां लड़कों के लिए जरा डिफरेंट नेचर की होती हैं उमूमी तौर पर, और लड़कियों के लिए जरा डिफरेंट नेचर की होती है, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट शुरू में नहीं होता, यानी लड़के से भी जो है वो आप किचन के काम करवा सकते हैं और करवाने चाहिए, ठीक है ना, लड़के से भी जो है वो आप सफाई सुथराई के काम करवाने चाहिए, लड़के से भी जो है ना वो कोई और इस किस्म की एक घर की जरूरियात है वो करवानी चाहिए, जब तक वो छोटा है, ठीक है ना। और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, अब बाहर के काम और जरा और फिजिकल स्ट्रेंथ जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वो वाले काम जो है वो आप लड़कों से करवाएं, और लड़कियों को जो है वो जब वो थोड़ी और बड़ी हो जाती हैं तो उनको जो है वो फोकस घर के दूसरे काम का, जैसे किचन के काम हैं और उसके अलावा घर की जो बनावट सजावट और अच्छा जो घर नजर आना चाहिए, सफाई सुथराई, ठीक है, और जो घर के अफराद हैं बड़ी उम्र के जो अफराद हैं उनकी खिदमत, ठीक है। तो ये जो है फिर वो जैसे जैसे बड़े होते हैं ना तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्प्लिट होनी शुरू हो जाती हैं, या होनी चाहिए, स्प्लिट होनी शुरू हो जानी चाहिए बड़े होने के बाद, ठीक है ना। यानी 12 13 14 ये वाली जो साल है ना इसको बड़े होने वाली एज कहा जाता है, बलूगत की एज भी जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो घर में इन्वॉल्व रखना बच्चों को, जब इन्वॉल्व रखेंगे तभी पता चलेगा ना, खुदा ना खासा कोई मसला हो गया तो अब उन्होंने विड्रॉ कर लिया है घर की एक्टिविटी से, तब आपको पता चलेगा कि भाई ये क्यों विड्रॉ कर लिया इन्होंने, अगर आपने शुरू से उनको इंगेज रखा ही नहीं था, बल्कि ग्रेड्स लेकर आओ ग्रेड्स लेकर आओ ग्रेड्स लेकर आओ, पढ़ती रहो पढ़ती रहो पढ़ती रहो, तो फिर तो ये वाली जो खतरे की अलामत थी ये तो आपके लिस्ट से ही निकल गई। अब ये एक अलामत होती जिससे कि आपको मसले का पता चल जाता, इंडिकेशन हो जाती, लेकिन आपने तो इसको यानी छोड़ा ही नहीं आपने इसको अपने बच्चे के लिए, ठीक है। तो अल्लाह ताला अक्ल समझ अता फरमाए, पता नहीं लोग या तो क्लास लेते नहीं हैं या लेते हैं तो पता नहीं कहाँ से बात गुजर जाती है, एक कान से घुस करके दूसरे कान से निकलना, तो ये तो शायद पुराना मुहावरा हो गया, राइट। अब तो लगता है ना कान के अंदर दाखिल ही नहीं होती, पता नहीं ऊपर ही से कहीं से जहाज की तरह उड़ करके गुजर जाती है हमारे सर के ऊपर से, ठीक है। तो भाई कर रहे हैं बस, पता नहीं क्लास लेते हैं नहीं लेते हैं या लेते हैं तो क्या करते हैं, लेकिन बस वही ग्रेड्स ग्रेड्स ग्रेड्स, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और जो है वो बड़ा फख्र से बताते हैं कि जी मैंने तो अपने बच्ची से काम ही नहीं करवाती हूँ लेकिन फिर भी उसके ग्रेड्स नहीं आते, मैं तो अपने बच्चे को काम में इन्वॉल्व नहीं करती हूँ फिर भी उसके ग्रेड्स नहीं आते। अल्लाह तुम्हें अकल समझ अता फरमाए, राइट, अपने कानों को इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए, अपने दिमाग को इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए कि तुम अपने बच्चे के साथ क्या कर रही हो, राइट, क्या हो गया है तुम्हें, क्यों समझ में नहीं आती बात, ठीक है। तो विड्रॉल फ्रॉम एक्टिविटीज, हमारे हजरत एक जुमला इसके ऊपर कहते हैं, बदले बदले सरकार नजर आते हैं, ठीक है। तो जब सरकार यानी औलाद जो है ना वो बदली बदली नजर आए ना, जरा उनका अलग 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 थलग रह रही है, तो फिर ये खतरे की अलामत होती है। और यही पॉइंट 4 भी है, वॉन्टिंग टू बी अलोन, तनहाई पसंद, ऐसे बच्चे आमतौर पर अकेला रहना पसंद करते हैं, ये खतरे की अलामत है, ठीक है। तो अकेले क्यों रहते हैं, क्योंकि जब तुम वहां होते हो जहां कोई और नहीं होता, ठीक है, तो जिसके साथ जब दिल फंस जाता है ना किसी का, बल्कि कहना चाहिए कि नफ्स अटक जाता है अगर कहीं पे जा करके, तो फिर यहाँ पे चूंकि नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है इस वजह से नफ्स का नाम लिया, अगर पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होती तो फिर दिल का नाम लेते। अल्लाह ताला से जब दिल अटक जाता है तो ऐसा शख्स भी तन्हाई पसंद हो जाता है, तन्हाई में अल्लाह की बातें करता है, तन्हाई में अल्लाह ताला के सामने रोता धोता है, जिसका दिल अल्लाह के साथ अटक जाता है, ठीक है ना, और जिसका दिल शैतान के साथ या शैतान के जो एजेंट्स होते हैं उनके साथ अटक जाता है, तो फिर वो भी तन्हाई पसंद, ताकि शैतान के साथ जो है वो राजो न्याज कर सके, शैतानी वसवसों को जो है ना वो अपने दिमाग के अंदर और उनको कुक कर सके, ठीक
ठीक है ना, या किसी शैतानी इंसान के साथ उसका वास्ता हो जाता है, तो अब जो है ना वो कोई ऐसा मीडियम अपने साथ रखेगा जिसके जरिए से वो तन्हाई में जा करके अपने शैतानी दोस्त या सहेली के साथ जो है वो बातचीत कर सके, फोन के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर या किसी और डिवाइस के जरिए से। तो ये तन्हाई पसंद है, यानी अपने माँ बाप को और अपने भाई बहन को छोड़ करके अलग थलग वक्त गुजारना, ये खतरे की अलावा। ठीक है, उन्होंने कुछ पूछा है कि बच्चे में लोग ईदी देते हैं तो ये पैसे किसकी मिल्कियत हुई? अगर बच्चे की मिल्कियत हुई तो वो कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, ये अच्छा आपने सवाल कर लिया, मेरे जहन में था लेकिन जब वो बात हुई तो उस वक्त बयान में नहीं आ सका। अल्लाह ने आपके दिल में डाला कि आप सवाल कर लें। तो बच्चों को जो ईदी वगैरह मिलती है ना, तो उसमें फिर जो देने वाले होते हैं, तो अगर तो वो ये कह करके दे रहे हैं या इस अंदाज से दे रहे हैं कि ये बेटा तुम्हारी है, ये तुम्हारे लिए है, ठीक है ना, तो उन बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया, बच्चे का कह करके कि ये इसके लिए, इवन माँ बाप को भी अगर दिया तो उसने कहा ये इसकी है, ठीक है ना, तो इस लफ्ज के इस्तेमाल से जो है ना वो बच्चे की मिल्कियत हो जाती, बच्चे की मिल्कियत। अब तकवा यही है कि माँ बाप बच्चे की मिल्कियत को जो है ना वो इस्तेमाल ना करें, इस्तेमाल ना करें, हत्ता कि बच्चे की अपनी जरूरत के लिए उसको इस्तेमाल ना करें। क्यों? इसलिए कि वो उसकी मिल्कियत है, और जो नाबालिग बच्चा होता है वो अगर इजाजत भी दे दे ना कि हाँ अब वो आप मेरे पैसे से जो है ना वो फलानी चीज खरीद दें, तो नाबालिग की तो रजामंदी का भी एतबार नहीं है शरीयत के अंदर, नाबालिग की रजामंदी का शरीयत के अंदर एतबार नहीं है। तो वो अपनी अपनी रजा से अपने अब्बू को जो है वो अपना पैसा दे दे तो ये अब्बू के लिए जायज नहीं होगा। तकवा यही है, ठीक है। तो हमारे हजरत ने बाकायदा इसके ऊपर बड़ा तफसीरी एक दफा कलाम किया था कि हमारे तो जिस बच्चे को जिसने भी कभी कुछ हदिया दिया है ना, हमने उसको उसके नाम से अलग रख दिया, जैसे एनवलोप जो पैसे होते हैं वो एनवलोप के अंदर रख दिए और उसके ऊपर उसका नाम लिख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यही करते हैं, हमेशा तक करते आए अपने छोटे बच्चों से लेकर के अब, ठीक है। तो उसको जो है ना फिर उसी के लिए रहने दें, और जब वो फिर इस उम्र का हो जाए कि उसके अंदर ये समझ अकल आ जाए तो फिर उसको उसमें से कुछ देना शुरू करें, बेशक उसकी मिल्कियत है लेकिन उसको दे नहीं, ठीक है। देने के लिए अक्ल व शऊर को पहले परखें, फिर उसके बाद उसके उसके हवाले करें, ठीक है ना। यानी पूरा का पूरा अगर उसके पास बहुत सारे पैसे इस तरह से जमा हो गए हैं उसकी मिल्कियत में, तो उसको पूरा का पूरा हवाले ना कर दें जब तक अपना शऊर उसके अंदर ना देख लें कि वो अपने पैसे से जो है ना वो अपना नुकसान नहीं कर ले, ठीक है। लेकिन अगर इतना बड़ा हो गया है कि हाँ वो जरा बाजार जाकर के खुद से कुछ चीज खरीद सकता है, या अपने किसी फ्रेंड को जो है वो बच्ची है तो अपने फ्रेंड के लिए कोई चीज अपने अम्मी अब्बू के साथ जब जाती है किसी शॉप में तो वहां से जो है वो, तो वो अब इस अक्ल शऊर की जब मालिक हो गई है तो उसको आप उसमें से थोड़ा सा दे सकते, क्योंकि अब वो अब जो है वो अब बालिग हो गई है, और बालिग की जो रजामंदी है ना उसका शरीयत के अंदर एतबार है, ठीक है। तो अब कर सकते हैं, छोटेपन में नहीं कर सकते, ठीक है। बहरहाल तो छोटे बच्चे को तो पैसे हवाले ही ना करें, चाहे उनके अपने क्यों ना, और आपके पैसे भी उनके हवाले ना करें, उनके अपने पैसे भी उनके हवाले ना करें, ठीक है। अच्छा, पांचवा पॉइंट, सेल्फीज, अपनी तस्वीरें बनाना, ठीक है। तो लड़कियों के बारे में खास तौर पर सेल्फीज बनाना, ठीक है, लड़कों के लिए भी सेल्फी बनाना कोई अच्छी चीज नहीं, ठीक है ना, लेकिन लड़कियों के लिए तो क्यों? इसलिए कि पर्दा अल्लाह ताला ने लड़कों पे फर्ज नहीं किया, पर्दा अल्लाह ताला ने लड़कियों पे फर्ज किया, ठीक है ना। जादू टोना तस्वीरों के ऊपर लड़कों पर भी हो सकता है और लड़कियों पर भी हो सकता है, तो लड़कों की भी हिफाजत करें भाई जादू टोने से। ये जो तस्वीरें खींच करके जो है वो इंटरनेट के ऊपर डालने की लत लगी हुई है ना, दुनियादार तो लड़की लड़के सभी करते हैं काम, और दीनदार जो है वो लड़कियों में नहीं करते तो लड़कों में करते हैं। याद रखें, जादू इतना आम हुआ हुआ है इस वक्त, इतना ज्यादा फैला हुआ है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हत्ता कि हमने एक बड़े शेख साहब से सुना कि मशायख इस वक्त जो है ना, जो अल्लाह वाले और जो बहुत ज्यादा यानी रूहानी मकाम के ऊपर फायज हैं, वो लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کچھ بڑے بڑے شیاطین کو جکڑ کر کے سمندر میں بند کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنی ایک شیاطین، ایک جنات کی فوج ہوتی تھی، تو انہوں نے جو شیطان جنات ہوتے تھے نا، ان میں سرکش، ان کو جو ہے وہ قید کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اس زمانے میں وہ رہا ہو چکے ہیں، وہ شیاطین اس زمانے میں رہا ہو چکے ہیں، اور اب وہ دجال کے آنے کے تمام جو اسباب ہیں نا، وہ اکٹھا کرنے میں کافروں کے ساتھ مل کر کے محنت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کافر جو یہ ہے نا، بڑے بڑے یہ نیتن یاہو ٹائپ کے، رائٹ، امریکہ کے صدر، اور جو برطانیہ اور یورپی، جو یہ جو طاقتیں ہیں ساری کی ساری، جسمانی یہ مادی طاقتیں، شیاطین ان کے ساتھ فلی انوالوڈ ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے کام کر. ٹھیک ہے، اور شیاطین جو ہے نا، یہ جو وچ کرافٹ اور میجک کرافٹ ہے نا، یہ ان کا پاس ٹائم ہے، یہ سمجھ لیں، یہ ان کا مشغلہ ہے، جادو ٹونا کر، یہ شیاطین کا مشغلہ ہے. اس طرح نا آپ جو ہے وہ ہمارا جو ہے نا وہ چگنا، یہ ایک مشغلہ ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کا، کچھ لوگوں کا مشغلہ ہوتا ہے کوئی اور سے، یہ ہابی جس کو کہتے ہیں نا، سمجھ لیں جادو کرنا شیاطین کی ہابی ہے. یعنی یہ ان کا کوئی پرائم جو ہے نا وہ، یعنی کوئی ٹاسک نہیں ہے، یہ پرائم ٹاسک تو ان کے اور بڑے بڑے ہیں، لیکن جادو از دیئر ہابی. یعنی یہ، یعنی کہتے ہیں نا، شغل میں کرتے ہیں، تفریح میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اب جو ہے نا، جو ہم اپنے آپ کو ایکسپوجرز دیتے ہیں نا، ناجائز ایکسپوجرز، تو بیسیکلی وی آر ایکسپوزنگ آور سیلوز اینڈ آور چلڈرن ٹو وچ کرافٹ، ٹو میجک. اور یہ اتنا بڑھ کیوں گیا، یہ ہر زمانے میں موجود تھا، آج اتنا بڑھ کیوں گیا ہے؟ کیونکہ یہ دجال کی جشن آمد دجال ہے، یہ آج کل یہ وہ کرتے ہیں نا ہمارے بریلوی، جشن آمد رسول. تو بھائی نبی علیہ السلام السلام تو آ چکے اور دنیا سے پردہ فرما چکے، اب نبی علیہ السلام السلام واپس نہیں آ رہے اس دنیا کے اندر. یہ تو زمانہ جشن آمد، یعنی شیاطین یہ جشن منا رہے ہیں، آمد دجال ہے یہ. ٹھیک ہے نا، تو اب یہ شیاطین جو ہے نا، یہ سوشل میڈیا، میڈیا کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، یوٹیوب کے اوپر جو ویڈیوز ڈالتے ہیں، ان سب کے اندر جادوئی تصرفات ہوتے ہیں، جادوئی تصرفات ہوتے ہیں. جیسے ہمارے مشائخ جب بیان کرتے ہیں نا، تو وہ اپنی توجہ کو اس بیان میں شامل کرتے ہیں. یہ تصرف ہوتا ہے حق کا تصرف، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا، وہ ہمارے دل میں آ رہی ہے، اور ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ ہمارے دل سے یہ رحمت ہوتی ہوئی بیان سننے والوں کے دلوں میں پہنچ رہی ہے. یہ نیت کرتے ہیں باقاعدہ مشائخ، اور یہ جو نیت کر لیتے ہیں نا، تو اس سے صرف لائیو آڈینس کو یہ رحمت نہیں پہنچتی، بلکہ یہ رحمت جو ہے وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے، تو ایون جو ریکارڈنگ سنتے ہیں نا، ان کو بھی اس سے فیض پہنچتا ہے. جو کلاسز کی، جو بیانات کی ریکارڈنگ سنتے ہیں، ان کو بھی یہ روحانی فیض پہنچ رہا ہوتا ہے، صرف الفاظ نہیں پہنچ رہے ہوتے، روحانی فیض پہنچ رہا ہوتا ہے. بالکل یہی معاملہ باطل سائٹ پر بھی ہے. یہ اپنے باطل کا جو ان کا، نعوذ باللہ، جو بھی ہے، فیض کا لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہیے، لیکن جو باطنی توجہات اور باطنی تصرفات ہیں نا، یہ اپنے یوٹیوب ویڈیوز کے اندر، یہ اپنے جو ان کے لیکچرز ہوتے ہیں، جو بھی ان کے اس قسم کے جو جو ٹیکنالوجی کے پروگرامز ہوتے ہیں، ان کا جو باطل کی تصرفات، یہ اس کے اندر سیوڈ ہوتے ہیں، ریکارڈڈ ہوتے ہیں. اب جو بھی ان کو سنے گا نا، انلیس کہ اس نے اپنا ایک حفاظتی خول بنایا ہوا ہے، ایک حصار بنایا ہوا ہے، جو کہ اس کے لیے بڑی روحانیت چاہیے ہوتی ہے. ہمارے پاس ایسی روحانیت تو نہیں ہے کہ ہم اپنا حفاظتی حصار جو ہے وہ ہر وقت بنائے رکھیں اپنے گرد، تو ہمارے پاس تو کوئی ایسا حصار نہیں ہے، کوئی ایسی پروٹیکشن لیئر نہیں ہے ہمارے اندر. تو جب ہم ان چیزوں کو سنتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کی یہ باطنی توجہات اور تصرفات جو ہیں وہ ہمارے قلب کے اوپر اثر انداز ہو رہے تھے. ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے جب ہم اپنی تصویریں پبلک کے اندر جو ہے وہ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو فارورڈ کرتے ہیں، رشتہ دار آگے فارورڈ کرتے ہیں. آپ جب رشتہ داروں کو کوئی چیز بھیجتی ہیں اپنی، तो अब वो रिश्तेदार जो है वो आपको क्या गारंटी है कि वो अपने पास रखेंगी, किसी और को नहीं दिखाएंगी? नहीं, वो उसको मोहब्बत में आकर के, प्यार में आकर के, और फखर में आकर के, और फलाने किसी और तकाजे के अंदर आकर के वो आगे फॉरवर्ड करती है, देखो देखो ये मेरी बच्ची है, देखो देखो ये मेरा बच्चा है, ये मेरे बच्चे का बच्चा है, ये मेरे बच्ची की बच्ची है, मेरी जो है ना वो नस्ल जो है वो है, कि देखो अल्लाह ताला ने मुझे कितनी नेमतें दी हैं, अपनी नेमतों का इजहार करते हैं फेसबुक के ऊपर। तो आपकी नेमतें जो है ना फिर इस तरीके से फिर शिकार हो जाती हैं, ठीक है ना? तो हमारे दीन में तो भाई कभी भी तस्वीर नहीं थी, अब लेकर आए हो इस तस्वीर को तो फिर भुगतो, अब जादू टोने से तुम महफूज नहीं रह सकोगे, अनलेस कि फिर कोई जायज वजह है, जायज मजबूरी है, और आपके पास ऐसे रूहानी हिफाजत है, फिर तो आप महफूज रह सकते हैं, वरना तो आप महफूज नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अपडेट जो व्हाट्सएप के ऊपर अपडेट डालते हैं ना अपनी तस्वीरों के साथ, या अपने बच्चे जो उनकी तस्वीरों के साथ, तो वो याद रखें इन बातों को। ठीक है, अब हम जो है वो आपके कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं, काफी सारे लिखते हैं आप लोग। तो उन्होंने लिखा कि बच्चियों के जब इतने पैसे जमा हो जाते हैं तो हम उसकी कोई ज्वेलरी बनवा के लिए उनके लिए रख सकते हैं, गोल्ड वगैरह उनके लिए रख सकते हैं, क्योंकि गोल्ड जो है ना वो इस इक्विवेलेंट, ठीक है, यानी ये इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन यूज एंड डिप्लीट, राइट? गोल्ड बिस्किट्स खरीद लिए अपने बच्चों के लिए, ठीक है ना? तो आप गोल्ड बिस्किट्स को जो है वो आप बिस्किट की तरह खा के खत्म तो नहीं कर सकते, वक्त में ऐसा तो नहीं होता कि वक्त गुजर जाएगा तो गोल्ड बिस्किट जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप उनकी करेंसी को गोल्ड में कन्वर्ट करके रख सकते हैं, ठीक है ना? ज्वेलरी भी तकरीबन ऐसी होती है, अगरचे कि ज्वेलरी में ऐसा नहीं होता, ज्वेलरी की जो है ना वो वैल्यू डिप्लीट होती है, क्योंकि ज्वेलरी इज नॉट 100% गोल्ड, ठीक है ना? तो इस वजह से बेहतर ये है ज्वेलरी बनाने की बजाय, क्योंकि ज्वेलरी में फिर पैसे कम होते हैं, और पैसे कम होने का मतलब ये है कि आपने ना तसर्रुफ कर लिया अपनी औलाद के माल में, क्योंकि वो कम हो गया ना, आपने तसर्रुफ कर लिया, अब उसकी उसकी क्वालिटी, उसकी वैल्यू कम हो गई। जबकि गोल्ड में उसको कन्वर्ट करना, प्योर गोल्ड बिस्किट्स में कन्वर्ट करना या कॉइन्स में कन्वर्ट करना, ये उसकी वैल्यू को प्रिजर्व करना कहलाएगा, ये उसकी वैल्यू को कम करने का का, का, का सबब नहीं बन रहा, प्रिजर्व करने का सबब बन, ठीक है? तो ऐसा कर लें जरूर से, लेकिन वैसा ना करें, ज्वेलरी भी और बाकी खर्च वगैरह वगैरह करना, तो ये तो बिल्कुल आपके आपके लिए जायज नहीं है, क्योंकि वो तो उस बच्चे की मिलकियत है। अच्छा, उन्होंने सवाल लिखा था कि माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द चाइल्ड टैक्स बेनिफिट आई रिसीव एज अ मदर इन कनाडा अराउंड $250 पर चाइल्ड, शुड आई सेव इट फॉर द चिल्ड्रन और आई यूज इट ऑन देम एज देयर डेली नीड्स एंड शॉपिंग, आई सेव्ड इट एंड थिंकिंग टू गेट गोल्ड फॉर माई टू गर्ल्स, क्या ये ठीक होगा? लेकिन एक बेटा भी है और उसमें उसके भी पैसे इंक्लूडेड हैं, काइंडली रिप्लाई सेपरेटली इन चैट। अच्छा, पढ़ तो आपने, आपको मैंने मैसेज पढ़ लिया है, वो आपको पहले लिख देते हैं कि भाई आपको ये प्राइवेट ही पढ़े ना क्लास के अंदर, लेकिन ये जो चाइल्ड टैक्स बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं ना, इसका मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है? बिकॉज ये डिपेंड्स, मतलब हम भी टैक्स वगैरह फाइल करते हैं, हमने भी खुद, आपने वैसे सवाल किया, हमने खुद ही कभी ऐसे, लेकिन इसकी वजह भी है कि जो चाइल्ड बेनिफिट्स मिलते हैं वो हुकूमत बेसिकली पेरेंट को दे रही होती है, ठीक है, पेरेंट को दे रही होती है, वो चाइल्ड की लिए चाइल्ड को नहीं दे रही होती है अक्सर, चाइल्ड की वजह से पेरेंट को दे रही है, ठीक है? तो ये जो है ना, ये इनकी जो ये जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग रशिया, ठीक है ना, इनके यहाँ बहुत बड़ा पॉपुलेशन क्राइसिस आया है, इनकी पॉपुलेशन जो है वो डिप हो रही है, नीचे जा रही है, जिसकी वजह से इनको जो है ना वो लेबर जो है ना वो इम्पोर्ट करनी पड़ती है मैक्सिको से, कैनेडा और यूनाइटेड स्टेट्स वाले, राइट? ये जो सारे भाग भाग करके आते हैं, तो इनको क्यों नहीं रोकते? क्योंकि दे नीड देम, दे नीड द मैक्सिकन लेबर्स, क्योंकि उनके अपने पास इतने बच्चे पैदा नहीं हो रहे, फिर इंडिया पाकिस्तान से जो वो सबको जो है वो सिटीजनशिप दे रहे होते हैं और रेजिडेंसी दे रहे होते हैं और वीजा दे रहे होते हैं, क्यों दे रहे होते हैं, क्योंकि उनको जरूरत भी है, मतलब दिस इज वन ऑफ द रीजन कि उनको जरूरत है लोगों की ना, काम करने वालों, ठीक है। तो अब जो है ना वो अब ये अपने बेवकूफी की जहालत है ना, ये तो बिल्कुल ही यानी निरे निखट्टू किस्म के लोग हैं ये, जाहिल कट गवार, यानी क्या इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल करो। पहले जो है वो अपने मुल्क में ऐसा माहौल बनाते हैं कि लोग जो है वो औलादों को खत्म करें, औलादों के बगैर जिंदगी गुजारना ज्यादा पसंद करें, पहले ऐसा माहौल बनाते हैं। फिर जब औलादों की तादाद कम हो जाती है तो अब जो है ना वो चाइल्ड टैक्स बेनिफिट्स देते हैं पेरेंट्स को कि हाँ भाई तुम औलाद हो, तुम्हारे पास बच्चे होने चाहिए, बच्चों को पढ़ाओ, हमारे पास लेबर्स की तादाद कम हो गई है। तो ये इसलिए चाइल्ड टैक्स बेनिफिट्स देते हैं कि जिसके पास ज्यादा बच्चे होंगे उसको ज्यादा टैक्स बेनिफिट मिलेगा। हालांकि जिन्होंने बच्चे अच्छे नहीं लगते जिनको, वो टैक्स बेनिफिट की वजह से बच्चे को थोड़ी पैदा करते हैं, तो इनके पास इतनी अकल है नहीं कि ये इस बात को समझ सकें कि टैक्स बेनिफिट की वजह से कोई बच्चा पैदा नहीं करेगा। बच्चा पैदा हो गया तो उसकी वजह से तो टैक्स बेनिफिट मिल रहे हैं, तो आपने कौन सा फायदा किया, अपना कौन सा फायदा हुआ आपका, ठीक है। तो ये तो जाहिल जुहला है और यानी बेवकूफ है, अकल इनकी मर गई है, एक ही लफ्ज मत मार दी गई है इनकी पूरी की, ठीक है। तो एनीवे तो टैक्स बेनिफिट जो है ये पेरेंट को मिल रहे हैं क्योंकि उसने जो है ना वो बच्चों को बर्दाश्त किया, उसने बच्चों की जो है ना वो यानी बर्दाश्त करना ही है ना उनके यहाँ, तो बच्चों बच्चों का मामला, बच्चों का रोना धोना कहाँ उनको बर्दाश्त होता है, लेकिन अगर किसी पेरेंट ने बर्दाश्त किया है तो भाई हुकूमत उसको पैसे दे, ठीक है ना। तो ये पैसे जो है ना वो बच्चों की मिल्कियत नहीं है, अब आप जैसे चाहें उसको खर्च करें, अपने ऊपर खर्च करें या जो है वो बच्चों के ऊपर खर्च करें, ये आपकी मर्जी है क्योंकि वो आपकी मिल्कियत है, क्योंकि हुकूमत ने आपको दिया है, ठीक है। वो अजीब और गरीब मौके, आप यानी हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं ना, हमें क्रिटिकल थिंकिंग करनी नहीं आती, हमें पता ही नहीं होता किसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग करनी है किसके ऊपर नहीं करनी है। आप जरा इन गोरों की और ये नॉन मुस्लिम्स की जो है ना वो हरकतों को जरा एक तनकीदी निगाह से देखें तो सही, फिर आपको पता चलेगा कि कितने बेवकूफ लोग हैं, कितने बेवकूफ, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर के आए ना, पूरा ईमान, कामिल ईमान, तब जो है ना वो आपको कुफर और काफरी की ये चीजें नजर आई। हमारा मसला सारा ये है कि हम नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर कामिल ईमान लाते ही नहीं, ठीक है ना, हम उनके ऊपर कामिल ईमान ही नहीं लाते, इस वजह से काफिरों की बातें हमें अच्छी लगती हैं नहीं, और हमें उनके नुक्स और नकाइस जो है ना वो हमें नजर नहीं आते। वजह ये होती है कि हमारा नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर कामिल ईमान होता नहीं है, बस बड़ा ही नाकिस और बड़ा ही यानी कमजोर ईमान होता है, और अक्सर औकात में तो हमारा ईमान होता ही नहीं है, हम ऐसी बस धोखे में मुबतला है कि हमारा ईमान है, हालांकि हमारा ईमान होता ही नहीं, लेकिन अगर होता भी है तो वो भी नाकस और कमजोर होता है। कामिल ईमान होना तब जो है ना फिर आपको कुफर और काफरी की बातें समझ में आएंगी कि ये कैसे घटिया किस्म के और कैसे बुरे किस्म के और कैसे बेवकूफ किस्म के लोग, ठीक है ना। बहरा अच्छा, किसी ने सवाल किया कि उस्ताद, आपने हमें उस्ताद बना दिया, यानी बहरा, क्या उस गोल्ड पर हम जकात देना, हमें जकात देना लाजमी है? अगर वो गोल्ड बच्चे की मिल्कियत है और वो बच्चा बालिग नहीं है तब उसके ऊपर जकात देना लाजम नहीं, ठीक है ना, लेकिन अगर बच्चा यानी बालिग हो गया और वो गोल्ड जो है वो 7.5 तोला से ज्यादा है तो फिर उसके ऊपर उसको जकात देनी होगी, ठीक है ना। तो ये तो जकात के मसाइल हैं, ये आप सीख लीजिएगा किसी और मौके पर। अच्छा, अगर कोई पैसे देते वक्त ये बोल दे कि इससे इस बच्चे के लिए ये चीज लेना, तो पैसों से क्या वही चीज लेनी चाहिए या पैसे सेव कर लेने चाहिए? भाई आपको दिए ना उसने पैसे कि आप जो है ये चीज ले लेना, ठीक है, तो इसमें जो है ना वो देखें, तकवा जो है ना, तकवा तो सबसे हाईएस्ट नेकी होती है ना, नेकी के सबसे हाईएस्ट फॉर्म, तो वो तो ये है कि आप जो है ना वो उस बंदे से कहें कि भाई ये जो है ना जो आप कह रहे हैं ना कि आप इसके लिए फलानी चीज ले लेना, ये मुझे आप मत कहें, आप मुझे ये बताएं कि ये आप पैसे किसको दे रहे हैं, आप ये मुझे दे रहे हैं या आप ये मेरे बच्चे को, ठीक है ना। अगर वो फिर कहे कि नहीं ये मैं आपके बच्चे को दे रहा हूँ तो फिर वो बच्चे की मिल्कियत है, अगर वो कहें कि नहीं मैं दे तो आपको रहा हूँ लेकिन मेरी, फिर वो अपनी बातों को चेंज करेंगे, वो कहेंगे मेरी ख्वाहिश ये है कि आप उसके लिए ये चीज ले लीजिएगा, तो भाई आपकी ख्वाहिश, हम हमारे ऊपर कोई वाजिब तो नहीं है कि हम आपकी ख्वाहिश पूरी करें। आपने अगर पैसे हमें दिए हैं तो अब ये हमारी मिल्कियत है, अब हम चाहेंगे अपने बच्चे के लिए मुनासिब समझेंगे तो वो चीज़ लेंगे, नहीं मुनासिब समझेंगे तो वो चीज़ नहीं लेंगे। आप हमें कोई फोर्स के थोड़ी कर सकते हैं भाई। अगर आपको खुद कोई बच्चे को चीज़ देनी है तो आप बराए मेहरबानी मार्केट जाएं, खरीद करके ला के हमारे बच्चों को दे दें। ये क्या बात हुई कि आप हमें जो है वो कर रहे हैं कि भी हम बच्चे के लिए चीज़ खरीद करके दें। यानी मेरे पास कोई और काम नहीं है कि मैं आपके हुक्मों को पूरा करता रहूँ बैठ करके, आपकी ख्वाहिशात को पूरा करता, मार्केट जाऊँ वहाँ पे जा करके जो है वो अपने बच्चे के लिए आपकी ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ खरीदूँ और फिर उस बच्चे को ला करके दूँ, है ना? आपने मुझे फारिग समझ रखा है, क्या मतलब है आपका? यानी आप ये कहें नहीं, ये वाले अल्फाज कहें नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक बात कह रहा हूँ कि भाई ये क्या टुक है, ये क्या तमीज तरीका है ये। भाई आपको कोई चीज देनी है मेरे बच्चों को, खुद खरीद करके दो ना, ठीक है? और अगर पैसा देना है तो भाई पैसे देने के ऊपर शर्तें मत लगाओ कि ये चीज खरीद करके दे देना, ठीक है? तो असल में तो यही है मसला, ठीक है? फिर उसके बाद ये है कि अब उन्होंने किसी ने दे दी है और आपने कुछ नहीं किया, साइकिल वगैरह जैसे आपने लिखा कि फॉर एग्जांपल साइकिल वगैरह के लिए पैसे दिए हैं किसी ने, तो भाई आपके ऊपर कोई वाजिब नहीं है कि आप दूसरों की जो है ना वो ख्वाहिशात को पूरी करते रहें। अगर वो आपकी मिल्कियत है तो वो आपकी मिल्कियत है, इट इज़ अप टू यू। आप साइकिल खरीदें, आप मोटरसाइकिल खरीदें, आप रिक्शा खरीदें या आप कुछ भी ना खरीदें, ठीक है ना? इट्स द मिल्कियत दैट काउंट्स, ओनरशिप दैट काउंट्स ऑफ दैट मनी, ठीक है? इन तहाइफ में उर्फ का भी एतबार है। अगर किसी इलाके का उर्फ इस तरह देने का मकसद वालिदैन को ही देना है कि जैसा कि पैदाइश वगैरह पर देना या उनसे ही ताल्लुक की वजह से है तो वो वालिदैन की मिल्कियत होगा। अगर ये कि देने वाला सराहत कर दे बस बच्चे का ही है, तो इन्होंने जो है वो फतवा जो है यहाँ पे लिख दिया है कि तहाइफ जो देते हैं ना बच्चों को तो इसमें उर्फ का भी एतबार है। इसी वजह से साजिश ने जो है ना वो तकवा का लफ्ज इस्तेमाल किया, ठीक है? कि तकवा जो है ना ये उर्फ का एतबार फिर वो फतवे की ये लैंग्वेज बन जाता है, ठीक है? फतवा ये है कि जी इलाके के अंदर जो बच्चे देते हैं ना तो वो वालदैन को ही देना जो है वो उनका मकसद होता है, तो वो फिर वालदैन की मिल्कियत होगी, ठीक है? तो अगर देने वाला सराहत कर दे कि जी ये बच्चे ही का है तो फिर वो बच्चे की मिल्कियत बन जाएगी, ठीक है? लेकिन जो हमने अपने हजरत से सुना और उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है और उसके ऊपर अमल भी अलहमदुल्ला किया, वो ये है कि बच्चे के लिए दीन दिया है तो बच्चे की मिल्कियत अलग ही करके रख दिया, ठीक है? अब जाहिर है ये हर कोई ऐसा कर भी नहीं सकता, ठीक है ना? जिसके पास जो है वो पहले ही यानी जरूरियात को पूरा करने के लिए अगर माल जो है वो कम है तो फिर वो फिर फतवा उसके लिए है ना फिर, ठीक है ना? यानी फतवा इज द फॉल बैक, ठीक है? तो फिर वो फतवे को इस्तेमाल करे और अपने इलाके के जो उर्फ है अगर वो वालदैन को ही देना समझा जाता है तो फिर वो वालदैन उस बच्चे के उस यानी वो जो माल उन्होंने दिया है, जो तोहफा उन्होंने दिया है, तो चूंकि उर्फ में ये है कि जी वो वालदैन को देते हैं तो फिर वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है? तकवा तो डिपेंड करता है, हर बंदा कैन नॉट इवन अफोर्ड तकवा। तो तकवे की ख्वाहिश रखनी चाहिए, तकवे की नीयत रखनी चाहिए, लेकिन एवरी वन कैन नॉट इवन अफोर्ड तकवा, ठीक है ना? क्योंकि यानी वो डिपेंड करता है ना तौफीक के ऊपर। अब अगर अगर अल्लाह ताला ने आपके हालात ऐसे बनाए हैं कि आप तकवा कर सकते हैं तब आप तकवा कर सकते हैं, वरना आप तकवा कर नहीं सकते, ठीक है ना? क्योंकि मजबूरी मजबूरी होती है, तो फिर वो अल्लाह ताला ने अल्लाह ही ने इस दीन के अंदर जहाँ तकवा का मुकाम रखा है वहीं पर फतवा का भी मुकाम है। तो फिर फतवे का फॉल बैक वो है उर्फ के मुताबिक जो मुफ्ती हजरात ने बताया है उसके ऊपर अमल कर लेना चाहिए। और बल्कि ज्यादा आसान और ज्यादा अच्छा काम तो यही है कि अपने शेख से जो है वो पूछ लेना चाहिए और शेख आपको आपके अहवाल के मुताबिक फिर बता देंगे कि जी आप फतवे पे अमल करें, आप तकवे की कोशिश ना करें, यू कैन नॉट अफोर्ड इट, ठीक है? बहरहाल जिन्होंने मैसेज लिखा था तो ज्यादातर उन्हीं से भी बात हो रही थी, तो उम्मीद है कि एग्री करेंगे। हो सकता है सबको बात समझ में आ रही हो। अच्छा, बहुत सारे लोगों की इस बात पे लड़ाई सुनी है कि ये जो चाइल्ड सपोर्ट मिलती है ये मदर की है या फादर की है। चाइल्ड सपोर्ट जो मिलती है मदर की है या फादर की है, तो भाई वो तो जिस माशरे में ये लड़ाइयाँ होती हैं तो वहाँ पे चाइल्ड सपोर्ट, हमारे यहाँ तो चाइल्ड सपोर्ट ही नहीं मिलती ना, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, पाकिस्तान में तो चाइल्ड सपोर्ट ही नहीं मिलती, ठीक है? तो जब सपोर्ट ही नहीं मिलती तो लड़ाई किस बात की? ये सपोर्ट किधर मिलती है? ये यूरोप में और अमेरिका में मिलती है। तो जब यूरोप अमेरिका में मिलती है तो फिर वहाँ पर तो वहाँ पे तो फिर अलग ही तकाजे होते हैं ना, वेन इन रोम
टू एज अ रोमन्स टू, ठीक है। तो फिर वहां पे तलाकें भी उसी हिसाब से होती हैं, और तलाकें होती हैं तो फिर वो चाइल्ड सपोर्ट जो है वो कोर्ट वाले डिसाइड करते हैं। कोर्ट का जज डिसाइड करता है कि जी जाना वो मदर को इतने पैसे मिलेंगे, और फिर फादर जो है ना वो हर साल मदर को इतने पैसे कमा करके देगा, अगरचे के तलाक हो चुकी है लेकिन फिर भी वो कमा करके देगा और मदर को देगा, ठीक है। तो भाई हमारे दीन के अंदर, शरीयत के अंदर तो पूरा पूरा क्लियर है ना कि जी जब ये तलाक हो जाए या तो फिर बच्चा किसकी मिल्कियत में रहेगा। इस उम्र तक जो है वो माँ की मिल्कियत में रहेगा, फिर इस उम्र के बाद जो है ना वो बाप की मिल्कियत में नहीं, नौज बिल्ला, बच्चा कोई प्रॉपर्टी को थोड़ी मिल्कियत, बल्कि उनकी तहवीन में रहेगा, उनके उनके सुपुर्दगी में रहेगा, उनके पास रहेगा, ठीक है। तो फिर ये जो फाइटिंग है चाइल्ड सपोर्ट के ऊपर, इसकी जरूरत की बात नहीं रह जाती। अगर किसी के घर के हालात फाइनेंशियल तौर पर सही नहीं है या जरूरत पूरी ना हो सके, तो क्या लड़की घर पर रहकर कमा नहीं सकती अपनी जरूरत के लिए? जी बिल्कुल कमा सकती है अपनी जरूरत के लिए, घर पे रह करके ही कमा सकती है, घर के बाहर जा करके भी अगर पर्दे का एहतमाम करके और फितनों से महफूज रह करके बाहर जाना पड़ जाए उसको मजबूरन, ठीक है, तो वो बाहर जाके भी कमा सकती है, लेकिन तमाम तकाजों को पूरा करके, फितनों से हिफाजत के साथ। लेकिन घर के अंदर तो डेफिनेटली कमा सकती है, कमाने के किसने मना किया है, ठीक है। और जरूरत है ना यहाँ पर, ठीक है, फाइनेंशियल तौर पर मामला खराब है, ठीक है, तो वो जरूरत, अब जरूरत इज अ बिग क्वेश्चन कि जरूरत क्या है, कितनी है, क्या वाकई है या नहीं है, या आपने जरूरी आपने ख्वाहिशात को जो है वो जरूरत करार दे करके फिर जो है वो करना शुरू कर दिया काम। तो ये सारे मसले तो होते हैं ना, तो अब उसके लिए फिर दीन का इल्म हासिल करना और उस इल्म के मुताबिक फिर जरूरत की डेफिनेशन करना, ये हमारे ऊपर लाजिम है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर शैतान जो है वो फिर हमसे गलत काम करवा देगा। अगर वालिदैन के पास वसाइल की कमी है तो क्या वो बच्चों के पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं घरेलू जरूरियात के लिए? अगर वालिदैन के पास वसाइल की कमी है तो भाई इसके अंदर उसूल तो आपको बता दिया कि छोटे बच्चे की तो रजामंदी भी एतबार नहीं होता, अगर वाकई उसकी मिल्कियत है तो फिर तो मसला है, वही फिर आप मुफ्ती हजरात से ये मसला पूछ लें। वैसे भी इस वक्त जो है वो साजिश को जाना है और क्लास खत्म करनी लाजमी है, ठीक है। जजाकुम अल्लाह खैर व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।